एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया जा रहा है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
एक पहेली जो लगभग 400 साल पुरानी है।
बिल्कुल, रोमन ब्रिटेन। हम सबने इसके बारे में सुना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या रोमन ब्रिटेन सच में रोमन था
या ये सिर्फ एक दिखावा था, एक परत जो ऊपर से तो चमकीली थी पर अंदर से कुछ और ही थी।
हाँ, यही सवाल आज हमारी चर्चा का केंद्र है और इसमें हमारी मदद करेगी पीटर साल्वे की शानदार किताब रोमन ब्रिटेन।
ये किताब किसी जासूस की तरह सुराग जोड़ती है और हमें ये दिखाती है कि जब दो संस्कृतियां टकराती हैं तो असल में होता क्या है।
ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये पहचान, अनुकूलन और एक मिलीजुली सभ्यता के जन्म की कहानी है, और इसके सबक आज भी बहुत प्रासंगिक हैं।
बिल्कुल, तो आज हम साल्वे के साथ इस सफर पर चलेंगे ये समझने के लिए कि रोमन शासन ने ब्रिटेन को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया
और क्या उस बदलाव के बाद जो बना वो वाकई रोमन था।
जवाब आपको हैरान कर सकता है। तो इस जांच को शुरू करने से पहले हमें अपने मुख्य जासूस यानी लेखक को जानना होगा, पीटर साल्वे।
जी,
ये कोई साधारण इतिहासकार नहीं है, वो कैम्ब्रिज और ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़े एक बहुत ही प्रतिष्ठित इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता हैं।
हाँ, और ये जो शब्द है ना, पुरातत्ववेत्ता, ये यहाँ बहुत जरूरी है।
क्यों, क्या खासियत है इसमें?
खासियत ये है कि वो सिर्फ, आप कह सकती हैं, पुरानी किताबों पर ही निर्भर नहीं रहते, शासकों के लिखे दस्तावेजों पर भी नहीं,
अच्छा,
क्योंकि वो तो अक्सर एक तरफा कहानी बताते हैं। साल्वे जमीन खोद कर सच निकालते हैं।
अरे वाह।
हाँ, खुदाई में मिले बर्तन, पुराने सिक्के, इमारतों की नींव, ये सब उनके लिए सुराग हैं।
मतलब वो सिर्फ विजेताओं की कहानी नहीं पढ़ते बल्कि आम लोगों के जीवन के सबूतों को देखते हैं।
बिल्कुल, इससे उन्हें एक ऐसी जमीनी हकीकत का पता चलता है जो अक्सर इतिहास की किताबों से गायब रहती है।
तो इसका मतलब उनका नजरिया काफी संतुलित होगा।
बहुत ज्यादा। वो ना तो रोमन विजय का महिमा मंडन करते हैं और ना ही उसके प्रभाव को खारिज करते हैं, बस सबूतों को बोलने देते हैं, और यही दृष्टिकोण इस किताब को इतना शक्तिशाली बनाता है।
तो इस जांच पड़ताल से साल्वे आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? किताब का मुख्य विचार क्या है?
उनका आइडिया इतिहास को देखने का तरीका ही बदल देता है। वो कहते हैं कि जिसे हम रोमन ब्रिटेन कहते हैं,
हाँ,
वो ना तो पूरी तरह रोमन था और ना ही पूरी तरह से ब्रिटिश।
मतलब कुछ और ही था।
बिल्कुल, एक नई चीज, एक हाइब्रिड समाज, जैसे दो रसायनों के मिलने से कोई तीसरा ही रसायन बन जाए।
दिलचस्प।
ये किताब उस पुरानी धारणा को चुनौती देती है जिसमें हम इतिहास को सिर्फ जीत और हार की कहानी के रूप में देखते हैं,
कि एक पक्ष जीता और दूसरे ने उसकी हर बात मान ली।
सही बात है। साल्वे दिखाते हैं कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल थी। ये जो रोमानीकरण की प्रक्रिया थी ना,
रोमानाइजेशन, हाँ,
वो कोई एक तरफा आदेश नहीं था बल्कि एक लेन देन था।
और ये लेन देन भी शायद हर जगह एक जैसा नहीं हुआ होगा।
बिल्कुल भी नहीं। ये किताब का एक और बड़ा खुलासा है, दक्षिण और पूर्व के अमीर मैदानी इलाकों में इसका असर बहुत गहरा था,
जहां बड़े बड़े रोमन शहर बसे, शानदार विला बने,
और जहां के स्थानीय अमीर लोग रोमन तौर तरीके अपनाने में अपनी शान समझने लगे।
लेकिन उत्तर और पश्चिम में,
वहां कहानी बिल्कुल अलग थी। जंगली पहाड़ी इलाके, वहां रोमन प्रभाव सिर्फ सेना की चौकियों तक ही सीमित था। आम लोगों का जीवन लगभग वैसा ही चलता रहा।
तो एक ही द्वीप पर मानो दो अलग अलग दुनियाएं बसती थीं।
हाँ, और ये किताब हमें इसी सफर पे ले जाती है। जूलियस सीजर के पहले अभियानों से लेकर 43 ईस्वी के आक्रमण, बौद्धिका के भयानक विद्रोह और फिर रोमन शासन के रहस्यमयी अंत तक।
तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि रोमन विजय ने ब्रिटेन को कितना बदला, हमें पहले ये जानना होगा कि बदलने के लिए वहां था क्या। मतलब क्या ब्रिटेन सच में एक पिछड़ा जंगली इलाका था?
हाँ, जैसा हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, पर साल्वे की खोज इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देती है।
अच्छा,
वो सबूतों के साथ दिखाते हैं कि रोमन के आने से पहले ब्रिटेन में लौह युग के बहुत ही जटिल समाज थे।
जटिल समाज जैसे?
उनके अपने बड़े बड़े किले थे जिन्हें हिलफोर्ट्स कहा जाता था। उनकी खेती की व्यवस्था काफी विकसित थी, और सबसे जरूरी बात, वो महाद्वीप के साथ, खासकर गॉल यानी आज के फ्रांस के साथ, बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहे थे।
ये तो कमाल है, मतलब वो दुनिया से कटे हुए नहीं थे।
बिल्कुल नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व के कुछ कबीले तो अपने सिक्के भी ढाल रहे थे।
अपने सिक्के?
जी, और रोमन शराब जैसी विलासिता की चीजें भी आयात कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन रोमन साम्राज्य का हिस्सा बनने से बहुत पहले ही आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उससे जुड़ चुका था।
फिर 43 ईस्वी में सम्राट क्लॉडियस ने पूरी सेना के साथ हमला क्यों किया? अगर व्यापार चल ही रहा था तो इस बड़े सैन्य अभियान की क्या जरूरत थी?
इसका जवाब ब्रिटेन में नहीं बल्कि रोम की अपनी राजनीति में छिपा है।
अच्छा, वो कैसे?
देखिए, उस समय क्लॉडियस रोम में एक नए और कुछ हद तक असुरक्षित सम्राट थे। उन्हें अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक बड़ी सैन्य जीत की सख्त जरूरत थी।
तो ब्रिटेन पर विजय उनके लिए एक पॉलिटिकल स्टंट था?
एक तरह से हाँ, अपनी छवि को चमकाने का एक शानदार मौका। कारण आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक था।
लेकिन ये विजय उतनी आसान नहीं रही होगी।
60-61 ईस्वी में बौधिका का विद्रोह हुआ। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह तो नहीं था, है ना?
बिल्कुल नहीं, वो एक विनाशकारी बवंडर था। बौधिका इकेनी कबीले की रानी थी। उनके नेतृत्व में हुए विद्रोह ने 3 बड़े रोमन शहरों को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया।
कौन कौन से शहर?
लंदन, कोलचेस्टर और सेंटलबंस। पुरातत्वविदों को आज भी लंदन की जमीन के नीचे उस तवाही की जली हुई लाल परत मिलती है। बाप रे,
इस विद्रोह ने रोमनों को लगभग द्वीप से खदेड़ ही दिया था।
तो फिर रोम ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी?
इस भयानक अनुभव के बाद ही रोम ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने समझा कि सिर्फ क्रूरता से काम नहीं चलेगा,
उन्हें स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलना पड़ा होगा।
हाँ, उन्होंने प्रशासन का एक ज्यादा व्यवस्थित तरीका अपनाया, और इसी स्थिरीकरण का एक बड़ा प्रतीक है हैड्रियन की दीवार।
हाँ, दीवार। हम सोचते हैं कि दीवारें सिर्फ दुश्मनों को बाहर रखने के लिए होती हैं, लेकिन साल्वे का इस पर कुछ अलग ही नजरिया है।
बहुत दिलचस्प नजरिया है। वो कहते हैं कि यह दीवार सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं थी, ये एक बहुत ही जटिल सीमा नियंत्रण प्रणाली थी।
मतलब एक मॉडर्न बॉर्डर की तरह?
बिल्कुल, जिसमें गेट थे, कस्टम चौकियां थीं। इसका काम सिर्फ बर्बर कबीलों को बाहर रखना नहीं था, बल्कि व्यापार को नियंत्रित करना, टैक्स वसूलना और लोगों की आवाजाही पर नजर रखना भी था।
अरे वाह, ये तो एक शक्तिशाली प्रतीक था जो कहता था यहाँ से हमारी व्यवस्था और सभ्यता शुरू होती है।
एकदम सही।
तो मतलब एक ही द्वीप पर दो दुनियाएं चल रही थी, एक तरफ रोमन स्टाइल के शहर और विला,
जिसे सेल्वेल सिविल जोन कहते थे। ये दक्षिण और पूर्व का निचला उपजाऊ इलाका था। यहाँ जीवन काफी शांतिपूर्ण था।
और इन विला में तो मैंने सुना है कि बहुत ही आधुनिक सुविधाएं थीं।
हाँ, कुछ विला में ऐसी सुविधाएं थीं जो आज भी लग्जरी मानी जाती हैं। खूबसूरत मोज़ेक फर्श और यहाँ तक कि अंडरफ्लोर हीटिंग का एक शानदार सिस्टम, जिसे हाइपोकॉस्ट कहते थे।
अंडरफ्लोर हीटिंग उस जमाने में?
हाँ, गर्म हवा फर्श के नीचे बनी नालियों से गुजरकर कमरों को गर्म रखती थी। मजाकिया तौर पर कहा जाता है कि ब्रिटेन में लोगों को वैसी गर्मी अगले 1500 साल तक नसीब नहीं हुई।
कमाल है। और इस सिविल जोन के ठीक विपरीत था उत्तर और पश्चिम का मिलिट्री जोन।
हाँ, वो पहाड़ी इलाका सीधे सेना के नियंत्रण में था। वहाँ का जीवन कठोर था और रोमन प्रभाव बहुत सतही।
और ये विभाजन इतना गहरा था कि शायद इसका असर आज भी वेल्स और स्कॉटलैंड की अलग पहचान में महसूस किया जा सकता है।
बिल्कुल। और अब आते हैं कहानी के सबसे पेचीदा हिस्से पर। इस सब का अंत कैसे हुआ? रोमन ब्रिटेन का पतन।
हाँ, ये 400 साल पुरानी व्यवस्था अचानक गायब कैसे हो गई?
साल्वे कहते हैं कि अचानक नहीं हुआ। ये किसी एक लड़ाई में हार नहीं थी। वो इसे सिस्टम का पतन कहते हैं।
सिस्टम का पतन?
सिस्टम्स कोलैप्स। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी, एक डोमिनो प्रभाव की तरह। इसकी शुरुआत तब हुई जब रोमन साम्राज्य को यूरोप में हो रहे युद्धों के लिए ब्रिटेन से अपनी सेनाओं को धीरे धीरे हटाना पड़ा।
अच्छा, तो सेना के हटते ही पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ये तो किसी आधुनिक आर्थिक मंदी की कहानी जैसा लगता है।
ठीक यही हुआ। आप इसे ऐसे समझिए, रोमन सेना ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का इंजन थी।
सबसे बड़ी नियोक्ता और सबसे बड़ी उपभोक्ता।
बिल्कुल। सैनिकों को सिक्कों में वेतन मिलता था और यही सिक्के बाजार में घूमते थे। जब सेना चली गई तो वेतन मिलना बंद हो गया। मौद्रिक अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई।
तो लोगों ने सिक्कों का इस्तेमाल बंद कर दिया। हाँ, और वापस वस्तु विनिमय पर लौट आए, बार्टर सिस्टम।
और इसका असर शहरों और विला पर क्या पड़ा?
असर विनाशकारी था। शहर जो प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र थे, वीरान होने लगे। विला जो शहरों और सेना के लिए अनाज उगाते थे, उनकी अर्थव्यवस्था ढह गई, क्योंकि उनका बाजार खत्म हो गया था।
तो ये एक धीमी दर्दनाक गिरावट थी। हाँ, एक पूरी जीवन शैली धीरे धीरे फीकी पड़ गई, और इसने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसे भरने के लिए एंग्लो सैक्सन कबीले आने लगे।
तो चलिए इस पूरी जांच के सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं। इस किताब के मुख्य विषय क्या हैं? मेरे लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है सांस्कृतिक संकरण,
कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। ये सिर्फ रोमन संस्कृति का ब्रिटिश संस्कृति पर हावी होना नहीं था, ये एक दो तरफा रास्ता था।
इसका कोई अच्छा सा उदाहरण है?
सबसे अच्छा उदाहरण धर्म में मिलता है। रोमन ने आकर अपने देवता नहीं थोपे, बल्कि रोमन देवताओं को अक्सर स्थानीय सेल्टिक देवताओं के साथ जोड़ दिया गया।
अच्छा,
बिल्कुल। दूसरा बड़ा विषय, जैसा हमने अभी देखा, ये है कि सेना सिर्फ एक युद्ध शक्ति नहीं थी, वो प्रांत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी।
तीसरा विषय है दो ब्रिटेन की हकीकत, सिविल और सैन्य क्षेत्रों के बीच का ये गहरा विभाजन, यह हमें याद दिलाता है कि रोमन प्रभाव कितना असमान था।
और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक, अंत का क्रमिक स्वभाव। सभ्यताएं अक्सर एक झटके में खत्म नहीं होती,
वो धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं।
हाँ, रोमन ब्रिटेन का पतन किसी एक लड़ाई में हारने से नहीं हुआ, बल्कि एक जटिल आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के धीरे धीरे बिखरने से हुआ।
इस किताब में कुछ विचार तो ऐसे हैं जो दिमाग में हमेशा के लिए बस जाते हैं। पहला तो यही जो हमारी पूरी चर्चा का सार है, रोमन ब्रिटेन न तो रोमन था और न ही ब्रिटिश, बल्कि कुछ नया था।
ये साल्वे के हाइब्रिड समाज के तर्क को पूरी तरह से दर्शाता है। एक और दिलचस्प विचार हेड्रियन की दीवार के बारे में है। दीवाल का काम जितना बाहर रखना था उतना ही अंदर आने देना भी था।
मतलब ये सिर्फ एक बाधा नहीं बल्कि एक फिल्टर थी।
बिल्कुल, जो लोगों, सामान और विचारों की आवाजाही को नियंत्रित करती थी।
एक और विचार जो धर्म के बारे में है वो भी बहुत गहरा है। ईसाइयत ब्रिटेन में बुतपरस्ती को नष्ट करके नहीं बल्कि उसे अपने में समाहित करके सफल हुई।
ये फिर से वही अनुकूलन की कहानी है। नए विचार अक्सर पुरानी स्थानीय परंपराओं की जड़ों पर ही पनपते हैं।
और अंत में रोमन विरासत के बारे में ये विचार,
हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। जब रोम ने ब्रिटेन छोड़ा तब भी ब्रिटेन उन मायनों में रोमन बना रहा जो महत्वपूर्ण थे।
इसका मतलब है कि भले ही सेना चली गई लेकिन रोमन प्रभाव, जैसे कानून की कुछ अवधारणाएं, शहरी नियोजन के विचार, ये सब किसी न किसी रूप में सदियों तक बने रहे।
विरासत इतनी आसानी से नहीं मिटती।
बहुत प्रासंगिक है, जैसे सांस्कृतिक एकीकरण को समझना।
बिल्कुल, रोमन ब्रिटिश अनुभव हमें सिखाता है कि सफल बहु सांस्कृतिक समाज एक दूसरे पर हावी होने से नहीं बनते बल्कि आपसी अनुकूलन से बनते हैं।
एक और बहुत बड़ा सबक है जटिल समाजों की नाजुकता के बारे में।
ये तो एक चेतावनी की तरह है। ये दिखाता है कि हमारी अपनी जटिल वैश्विक प्रणालियां, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, सप्लाई चेन हो, प्रणालीगत शौकों के प्रति कितनी संवेदनशील हो सकती हैं।
अगर एक महत्वपूर्ण हिस्सा हटा दिया जाए तो पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है।
सही बात है, और बुनियादी ढांचे का महत्व भी है।
रोमन सड़कों का निर्माण,
हाँ,
कई रोमन सड़कों के रास्ते आज भी ब्रिटेन की आधुनिक सड़कों का आधार हैं। ये दिखाता है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर समाज को सदियों तक आकार दे सकता है।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे आश्चर्यजनक बात थी वो ये थी कि रोमन ब्रिटेन का अंत कितना धीमा और प्रणालीगत था।
ये किसी फिल्म की तरह एक बड़े क्लाइमैक्स के साथ खत्म नहीं हुआ बल्कि एक पूरी जीवन शैली धीरे धीरे फीकी पड़ गई। ये हमें याद दिलाता है कि प्रगति कोई सीधी रेखा नहीं है।
और मेरे लिए सबसे मूल्यवान सबक ये है कि इतिहास कितना जटिल और सूक्ष्म होता है। साल्वे हमें दिखाते हैं कि रोमीकरण एक दो तरफा रास्ता था।
हाँ,
ये हमें किसी भी ऐतिहासिक घटना को सिर्फ अच्छे या बुरे के चश्मे से देखने के खतरे से आगाह करता है। हर चीज के कई पहलू होते हैं
और सच अक्सर बीच में कहीं छिपा होता है।
श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, जब एक शक्तिशाली वैश्विक संस्कृति स्थानीय परंपराओं से मिलती है तो क्या हमेशा कुछ खो जाता है या कुछ नया और मूल्यवान भी बनाया जा सकता है? रोमन ब्रिटेन का अनुभव बताता है कि जवाब शायद दोनों है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।